أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنستعين وهو خير ناصر ومعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سورہ اعلیٰ کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں. اسبق بن نماد نواتا سے روایت ہے. قال لما قدم علی الکوفۃ صلی بہم اربعین صباحا فقرأ بہم سبح اسم ربک الاعلی. اسبق بن نباتا کہتا ہے کہ جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کوفے آئے تو 40 صبح کی نمازیں, 40 دن جب مولا نے صبح کی نماز پڑھائی تو 40 کے 40 دن مولا نے صبح کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا. سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کی. مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان علی علیہ السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربك الأعلى سے جو سورہ شروع ہوتا ہے اس سے محبت کرتے تھے اور رسول خدا اس سورہ کو پسند کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعہ ان یقرأ فی لیلۃ الجمعہ بالجمعہ وسبح اسم ربک الاعلی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر کچھ چیزیں ضروری ہیں, ان کو انجام دینا چاہیے. البتہ واجب یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے, لیکن شیعوں کی ذمہ داری ہے, یعنی یہ واجب یہاں اہمیت سورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو شیعہ ہیں ہمارے محب ہیں وہ شبہائے جمعہ میں جمعہ کی رات سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں, اور جب اس سورہ کی تلاوت انسان کرے گا تو درواقع کے صفات شیعہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان شب جمعہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے. سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بارے میں آپ کے محضر میں ہم نے کچھ بیان کیا کہ یہ سورہ سورہ اعلیٰ, اس کے بارے میں تین نظریے پائے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہ سورہ مکی ہے, کچھ افراد کہتے ہیں یہ سورہ مدنی ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوا, کچھ افراد کہتے ہیں کہ اس کی سورہ کی کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں. اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ توحید اور ان چیزوں سے مربوط ہیں, اور آخری جو آیات ہیں وہ احکام سے مربوط ہیں, اور یہ مدینہ میں سے آیتیں نازل ہوئی. تو اس کا ابتدائی حصہ مکی ہے اور انتہائی حصہ مدنی ہے. ترتیب فعلی کے حساب سے جو قرآن میں جو ترتیب ہے مرتب کیا گیا ہے اس حساب سے یہ 87 نمبر سورہ ہے, لیکن نازل ہونے کی ترتیب کے حساب سے کہ یہ سورہ کس انداز سے نازل ہوا اس ترتیب کے حساب سے یہ ان ابتدائی سوروں میں سے ہے کہ مثلاً 7 نمبر پر یا 8 نمبر پہ یہ سورہ نازل ہوا. یہ سورہ لیل سے پہلے اور سورہ تکویر کے بعد میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. اس سورہ کے معارف اور موضوعات توحیدی ہیں. ابتدا میں آپ جیسے ہم نے پہلے جلسے میں بیان کیا کہ اس سورہ کے جو مضامین ہیں, ابتدا خداوند متعال کی توحید اور اسم مبارک سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے, اور توحیدی نکات اور معارف کے بارے میں یہ سورہ بیان کیا گیا ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ جو سبح ہے تسبیح, ये तस्बीह में तंजी का पहलू जो है वो गालिब है। और तस्बीह यहाँ पर पाक समझना, मुनज्जह समझना इस माना में है, यानी खुदावंद मुताल उन तमाम बातों से पाक व बरतर है जो उसकी आला शान के मुनाफी हैं। खुदा की शान के जो भी चीज़ खिलाफ है, मुनाफी है, उससे खुदावंद मुताल पाक और बरतर है। अल्लाह ताला का इंसान जब तक सही तसव्वुर नहीं करेगा, इंसान की जब तक तौहीद मजबूत नहीं होगी, तो इंसान का रास्ता सही नहीं रहेगा। इंसान की जब तक तौहीद सही नहीं है, इंसान की तमाम उलूम और मारिफत का सरचश्मा तौहीद है। इंसान इल्म तौहीद और तौहीद जब तक इंसान अपनी सही नहीं करेगा, सारी जो दूसरी इमारतें हैं, जो सारी दूसरे जो मारिफ हैं, वो इंसान उनमें टगमगा जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इंसान पहले तौहीद अपनी तुरे, खुदा के बारे में अकीदा, खुदा की सिफात के बारे में, खुदा की आसमा के बारे में, ज़ात खुदा के बारे में जो नज़रियात तौहीद हैं उनको पुख्ता करे। और दूसरी बात जो सब्बह इस्म रब्बिकल आला से समझ में आती है, वो ये है कि खुदावंद मुताल ने इंसान इंसान को तौहीद की दावत दी है। और इंसान जैसे तस्बी करता है, उसका आला और अतम मिस्ताक नमाज है। खुदा को याद करना का बेहतरीन मौरिद जो है वो नमाज है। नमाज शब है, ये पंजगाना नमाजें हैं। इंसान उस वक्त खुदा को याद कर रहा होता है, खुदा की तस्बीह कर रहा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जैसे मादी ज़िंदगी में, आपको मिसाल दूं मैं, इंसान मादी ज़िंदगी में, इस दुनियावी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, इसमें इंसान सांस का मोहताज है। अगर इंसान की सांस रुक जाए किसी लहजे में भी, किसी वक्त में भी, अगर सांस ये रुक जाए, सांस ख़त्म हो जाए, ये मादी ज़िंदगी इंसान की ख़त्म, वो आखिरी दिन होगा, वो आखिरी लहजा होगा, वो आखिरी सेकंड होगा जिस वक्त इंसान की सांस रुक जाएगी। ये जब तक कल्ब मुतहर्रिक है, ये डग डग की जब तक आवाज आ रही है, इंसान ये चल रहा है, फिर रहा है, मादी जिंदगी इंसान की जारी और सारी है। लेकिन इंसान की एक रूहानी जिंदगी है, मादी जिंदगी से हटकर एक रूहानी जिंदगी है, और रूहानी जिंदगी तब तक बाकी है जब तक उसमें अल्लाह खुदा का जिक्र है, तस्बीह है, परवरदिगार है। इंसान अगर रूहानी हिसाब से, मानवी हिसाब से अपने आप को कवि करना चाहता है, इंसान चाहता है कि उसकी रूहानियत कवि हो, मानवी हिसाब से उसका मानवी जंबा कवि हो, ताकतवर हो, तो लहजा बलहजा कोई ऐसा लहजा ना हो जिसमें तस्बीह है परवरदिगार ना हो। तो इस हिसाब से जैसे इंसान मादी हिसाब से सांस का मोहताज है, इसी तरह रूहानी जिंदगी में भी अल्लाह की याद इंसान की रूहानी जिंदगी को जिला बख्शती है। और दूसरी बात यहां पर जो इस तस्बीह से समझ में आ रही है कि जब खुदा का नाम लिया जाए, किसी और का नाम खुदा के साथ न लिया जाए। जो झूठे खुदा हैं, जो बुत हैं, जैसे नाम लिए जाते थे, असलन व अबदा खुदा के नाम के साथ किसी का नाम असलन रवा नहीं है। इसमें परवरदिगार जब इंसान ले, अपनी जबान पर लाए, किसी और का नाम लेना जायज नहीं है। और दूसरी बात ये कि अक्सर इस बात के मोतकिद हैं, तस्बीह इस्म बेमाना तस्बीह मुसम्मा है, यानी इस हिसाब से कि इंसान इस बात का अकीदा रखे कि खुदावंद मुताल हर तरीके के शिर्क से पाक व मुनज्जा है, और इंसान क्या वजूद भी तस्बीह करे, इंसान की गुफ्तार भी तस्बीह करे। ऐसे ना हो कि लक लक जबानी हो, अल्लाहू अल्लाहू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह करे और इंसान काम उल्टे सीधे करता फिरे। ना, इंसान का किरदार भी तस्बीह वाला हो, इंसान की गुफ्तार भी तस्बीह वाली हो। अगर जबान पे अल्लाह है तो इसका वजूद भी अल्लाह वाला हो, रंगे इलाही हो, सिबगतुल्लाह हो। ऐसे ना हो कि इंसान मसलन जैसे माह मुबारक रमजान, अभी अभी ताजा ताजा रोजे रखे हमने, इंसान रोजा रखे जाहिरी हिसाब से रोजे से, लेकिन आंख से गुनाह कर रहा है, जबान से झूठ बोल रहा है, कानों से गाने सुन रहा है, गीबत सुन रहा है, ये दरवा के इसका जाहिरी रोजा है। इस रोजे की वो अहमियत नहीं है। रोजा तब है जब इसका वजूद, इसका हर उजवा, हर उज्व इसका रोजे से हो, इसकी आंख रोजे से हो, इसकी जबान रोजे से हो, इसके कान रोजे से हो, तब जाके ये सिबगतुल्ला रंग इलाही अपनाएगा। तो तस्बीह इस्म फकत गुफ्तारी काफी नहीं है, तस्बीह किरदारी और गुफ्तारी दोनों इंसान को अपनानी चाहिए। और आखिरी जो नुक्ता इस आयत में बयान किया जा सकता है कि खुदावंद मुताल तमाम मखलूकात से, हर चीज़ से बुलंद बाला है, और कोई भी माबूद जो लोगों ने बनाए हुए हैं और जो दूसरे माबूद समझते हैं, वो इस चीज़ की लियाकत ही नहीं रखता कि उसका नाम खुदा के साथ लिया जाए। हर चीज़ से आला अरफ बुलंदो बाला है। खुदावंद मुताल हमें मारिफ़े तौहीदी वो हासिल करने की और समझने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।